और रात्रि क्लास चल रहा था, चौदह एक 1967 पहले पेज के मध्य अंत में बात चल रही थी। बाबा जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं वो वेद का बाबा जरूर राजयोग सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। क्यों कहा? कौन से सन की वाणी है? 67 की वाणी है। तो भविष्य के लिए क्यों बताया? पढ़ाएंगे। राजयोग की पढ़ाई है 1967 में नहीं पढ़ाई रही थी क्या? राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ाई रही थी है? नहीं नहीं पढ़ाई रहे थे तो क्या पढ़ाई रहे थे? राजयोग पढ़ाई रहे थे। राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे थे है? है गीता ज्ञान कहेंगे उस समय, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत पीकर देवताएं अमर बनती हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया उसे गीता ज्ञान तो कहा, लेकिन गीता ज्ञान अमृत क्यों नहीं कहा? क्योंकि अमृत मंथन से निकलता है और दादा लेखराज के द्वारा कोई प्रकार का मुरली की महावाक्यों का मंथन नहीं हुआ। इतना भी मंथन नहीं हुआ कि स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप कौन है प्रैक्टिकल में। और एक साल के बाद वो शरीर भी छोड़ गए, तो शरीर ही छूट गया तो प्रैक्टिकल में स्वर्ग की स्थापना की बात ही नहीं। लेकिन गाया तो हुआ है शास्त्र में ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा काहे की स्थापना हुई? है ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। संपूर्ण ब्राह्मणों के संगठन की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता, अपूर्ण ब्राह्मणों की स्थापना हुई। जो नौकुरियों के ब्राह्मण हैं भक्ति मार्ग में भी गाये हुए, मना अल्लाह अव्वल दीन ने जो ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण सो देवता धर्म और फिर क्षत्रिय धर्म, इन तीन धर्मों की जो स्थापना की थी वो धर्म की स्थापना नहीं हुई और राज्य की भी स्थापना नहीं हुई, फिर राजधानी की भी स्थापना नहीं हुई। क्योंकि राजयोग की पढ़ाई से राजा बनाए जाते हैं, अव्वल नंबर का सूर्यवंशी राज्य स्थापन किया जाता है और राजधानी की स्थापना की जाती है। राजधानी कोई जड़ मकानों के बनाने करने को नहीं कहा जाता, राजधानी माने ही राजा की धारणा शक्ति। धारण करने वाली शक्ति हर मनुष्य मात्र अपने परिवार का राजा होता है, और प्रत्येक मनुष्य जो राजा होता है अपने परिवार का, उसकी धारणा शक्ति, उसकी गृहिणी ही होती है जिसे धरणी कहा जाता है, कन्या माता रूपी धरणी। वो कन्या माता रूपी धरणी ही गृहिणी कही जाती है। शास्त्रों में भी लिखा है न ग्रहम ग्रहम इत्युच्यते, गृहिणी ग्रहम उच्यते। ऊंटों का मकान, मिट्टी का मकान गृहिणी नहीं कहा जाता। जो घर की धरित्री है, घर परिवार को धारण करती है, संभालती है, वो ही ग्रह है, उसी से घर ग्रस्त बनता है। तो भगवान ने जिस अव्वल नंबर धर्म की स्थापना की और अव्वल नंबर राज्य की स्थापना की, जो मुसलमानों में भी गायन है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, वो ऊंचे से ऊंचा पाठधारी इस दुनिया में दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं, अगर होता तो उसके यादगार मंदिर बनते, यादगार मूर्तियां बनती और भक्तजन उसे याद भी करते, परंतु न याद, न यादगार मूर्तियां, न मंदिर। इससे साबित होता है कि गिरती कला के जो धर्म हैं और राज्य हैं और राज्य को पाने वाली आत्माएं हैं, वो ब्रह्मा रूपी ब्रह्म माने बड़ी माँ, माँ माने माँ, उस ब्रह्मा की गोद में खेले हैं। जो राजा है उतरती कला के हुए हैं, चाहे वो सतयुग का पहला नारायण हो, चाहे दूसरा तीसरे से लेके आठवां नारायण हो, वो सब उतरती कला वाले नारायण। क्योंकि उन सभी नारायण नारायणियों की आत्माओं ने देह की इंद्रियों का सुख भोगा, जैसे लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे सतयुग में खड़े हुए राधा कृष्ण एक दूसरे की दृष्टि का सुख ले रहे हैं। ये दृष्टि, ये आंख भले ज्ञान इंद्रिय है लेकिन देह का अंग तो है। देह विनाशी है या अविनाशी? तो विनाशी देह का सुख लेने वाले विनाश की दुनिया की ओर जाएंगे, नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? इसलिए बोला कि दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले सभी नौकुरियों, वो उतरती कला की कुरियों के नौकुरियों में से नीचे जाने वाले ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में पलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बनते हैं लेकिन क्या नहीं बनते है? कम कलाओं वाले ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं बनते। प्रजापिता के द्वारा, मुकर्रर रथ के द्वारा शिव बाप ने जो ऊंचे से ऊंचे धर्म की धारणा स्थापन की थी, श्रेष्ठ धारण श्रीमत कहो, भगवत गीता ज्ञान का मर्म धारण किया था, गीता ज्ञान का मंथन करके जिन्होंने सार निकाला, मक्खन निकाला, अमृत रस निकाला, वो ही उच्च कोटि के देवत ब्राह्मण। अब्बल नंबर जो ब्रह्मा कहा गया, परम ब्रह्म, उसको पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं और आगे पीछे नंबरवार बाप से वर्षा भी पाते हैं। जो हेवनली गॉड फादर का ऊंच से ऊंच वर्षा है, वो वर्षा कोई अगले जन्म में नहीं मिलता है। जैसे इस दुनिया में हर बाप के बच्चे को इसी जन्म में बाप वर्षा देता है या अगले जन्म में देता है? है? इसी जन्म में देता है। ऐसे ही वो हेवनली गॉडफादर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला है, वो सतयुग के पहले सीन का वर्षा देता तो है, परंतु सिर्फ अपने बड़े बच्चे को देता है। सतयुग में जो जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी, उनमें बड़ा बच्चा कोई होगा या नहीं होगा? है कौन है? ब्रह्मा नाम थोड़े ही देंगे, कृष्ण वाली आत्मा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण, उसको जन्म देता है। लेकिन वो 16 कला कृष्ण वो भी उतरती कला वाला है या चढ़ती कला वाला है? पहले जन्म के बाद दूसरी पीढ़ी में जब वो आत्मा जन्म लेगी तो चौथाई कला कम होगी या नहीं होगी? उसका कारण क्या हुआ? कोई तो कारण होना चाहिए, बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं है। हाँ, कि जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, सचिदी शक्ति का भी पहला पत्ता है, वो भी इंद्रिय का सुख लेता है, बल ज्ञान इंद्रिय का सुख लेता है, ज्ञान इंद्रियों में भी जो श्रेष्ठ इंद्रिय है आंख का सुख लेता है। लेकिन है तो देह का अंग ना, देह विनाशी है ना? क्या विनाशी है? और आंखें भी देह का अंग है या नहीं है? तो उससे जो प्राप्ति होगी वो विनाश की प्राप्ति होगी, विनाश की ओर ले जाएगी या उत्थान की ओर ले जाएगी? विनाश की ओर ले जाने वाली। बाकी 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाला जो बाप है, वो कृष्ण की सतयुग की पहली पीढ़ी की राजधानी का स्थापन करने वाला है। कृष्ण बच्चा थोड़े ही राजधानी स्थापन करता है, और वो राजधानी सतयुग में स्थापन होती है या सतयुग से भी पहले ही स्थापन हो जाती है? पहले ही स्थापन हो जाती है। कौन से युग में? सतयुग से भी ऊंचा युग है, स्वर्णिम संगम युग है, जिसके दो छेड़े हैं, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो सतयुग के आदि में सतयुग का जो कृष्ण है, उसको जन्म देने वाले बाप ने उस आत्मा को भी सतयुग की अवलंबर जीवन मुक्ति का वर्षा दिया था, और उस आत्मा ने उसी जन्म में स्वीकार भी किया था कि मैं सृष्टि का पहला प्रिंस बनने वाला हूं, और सचिदी सृष्टि का ऊंचे से ऊंचा वर्षा लेने वाला हूं, 16 कला संपूर्ण। परंतु देने वाले को भी जाना होगा या नहीं जाना होगा? हैं? जाना होगा। बच्चा बाप को न माने न पहचाने तो वर्षे का अधिकारी कैसे होगा? इसलिए बोला है कि बाप के साथ बच्चे की भी जन्मदिन जन्म मनाया जाता है। बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है तो किस रूप में इकट्ठा है? देह के रूप में इकट्ठा है या संपन्न आत्मा के रूप में इकट्ठा है? बाप और बेटे के रूप में दोनों आत्माओं ने जो संपन्न स्टेज पाई, इस दुनिया में संपन्न ग्रेड पाया, वो संगम युग में ही दोनों आत्माओं को पता लग जाता है। बाप को पता लगता है कि मैं किसी एक युग का नहीं, सतयुग का राजा नहीं, त्रेता का राजा नहीं, द्वापर का कोई राजा नहीं, कलयुग का भी राजा नहीं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुष जो आत्मा कहा जाता है, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला आराम से उन आत्माओं के बीच मैं उत्तम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। और इस संसार में मेरा ऊंचे से ऊंचे पद है विश्व का बादशाह, जो शास्त्रों में गाते भी हैं। क्या गाते हैं? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, किसके नाथ? सारे विश्व के नाथ, एक धर्म का नाथ नहीं, एक देश का नाथ नहीं, विश्व धर्मों का नाथ। विश्व धर्मों में जो भी धर्म पिताएं हुए, ब्रह्मा से लेकर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर कलयुग के अंत तक, उन सब की नाक में नकेल डालने वाला नाथ। बैल को क्या डाला जाता है? नाक में बैल को नाथ डाली जाती है। कब डाली थी नाथ? वो बैल ज्ञान की खेती करने काबिल कब हुआ था? बैल जब तक सांड रहता है, नाथ नहीं डाली जाती है, तब तक वो खेती की करने के काबिल नहीं होता है, अड़ियल होता है, अपनी मनमानी चाल चलता है। जब नाथ डाल दी जाती है तो जैसे चलाया जाता है वैसे चलता है। तो सतयुग के कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा ने, हीरो पार्टधारी ने, पहले पत्ते के रूप में जो जन्म लेता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में, उसी को कंट्रोल कर लिया। जब तक कंट्रोल नहीं करता है तब तक वो बैल बैलबाजी करने से नहीं चूकता और शंकर वाली आत्मा में प्रवेश करके मनमाने तरीके से एक्टिविटी मिलाता है। और जब उस बैल को कंट्रोल कर लिया जाता है तो जो शास्त्र में गायन है संपूर्ण परिचय पुरुषार्थ का गायन है या अपूर्ण पुरुषार्थ का गायन है? शास्त्रों में संपूर्ण पुरुषार्थ का गायन है। सचिव कृष्ण को जन्म देने वाली आत्मा हीरो पार्टधारी, उस बैल के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा को पूरा ही कंट्रोल कर लेता है और सवार हो जाता है। इसलिए संपूर्ण स्टेज की यादगार शास्त्रों में शंकर किसके ऊपर सवार दिखाया जाता है? बैल पर सवार दिखाया जाता है। जब तक बैल पर सवारी नहीं की है अथवा जब तक उस बैल को नाथ नहीं डाली है, नकेल नहीं डाली है नाक में, तब तक वो बैल शंकर पर सवार रहता है। और जब नकेल डाली जाती है तब क्या होता है? शंकर बैल पर सवार हो जाता है। साधारण पुरुषार्थ में सवार होता है या स्पेशल पुरुषार्थ करता है तब सवार होता है? स्पेशल पुरुषार्थ है। जैसे दौड़ होती है, अच्छे दौड़ दौड़ने वाले, लंबी दौड़ दौड़ने वाले पहले पहले या मध्य दौड़ में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते, धीरे धीरे चलते रहते हैं। जब लास्ट दौड़ का टाइम आता है तो हाई जंप लगा जाते हैं। तो यही बात है, जब शंकर वाली आत्मा कहो, सूर्यवंशी राम वाली आत्मा कहो, पांच सौ सात करोड़ मनुष्य शक्ति का बाप कहो, प्रजापिता, वो आत्मा जब हाई जंप लगाती है तो क्या परिणाम आता है? है क्या गायन हो जाता है? शंकर बैल पर सवार हो जाता है। और सारी दौड़ पुरुषार्थ की तीव्रता का भार किसके ऊपर डालता है? है बैल के ऊपर डालता है। जैसे रामायण में भी दिखाया, राम ने रावण के ऊपर विजय पाने के लिए सारा भार किसके ऊपर डाला हुआ था? हनुमान के ऊपर डाला हुआ था। ऐसे ही वो तीव्र गति से दौड़ दौड़ने वाली आत्मा, जिसे कहते हैं पवन सुत, जैसे हवा तीव्र गति से दौड़ सकती है, ऐसे तीव्र गति से दौड़ने वाली वो आत्मा राजधानी की संपन्न स्थापना का कार्य बहुत ही थोड़े समय में कर लेती है। तो बताया कि बाप और बच्चा नर से नारायण बनने वाली नारायण की आत्मा और नर से पहले प्रिंस बनने वाली कृष्ण की सतयुगी आत्मा दोनों के संपन्नता का टाइम कौन सा है, दोनों के प्रत्यक्षता रूपी जन्म का समय कौन सा हुआ है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म एक ही समय पर होगा या अलग अलग समय पर है? एक ही समय है। कौन सा है? महाशिवरात्रि। कब हुई महाशिवरात्रि? असली महान ते महान अंधकार की रात्रि कब होती है? है वो तो लगते हैं लेकिन टाइम चाहिए। वो एग्जैक्ट टाइम चाहिए जब महाशिवरात्रि होती है, शिव जयंती की यादगार होती है और सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है। बाहरी दुनिया के विधर्मियों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो पहले पहले ईश्वरीय ज्ञान को लेते ही नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाती है उस सृष्टि में जो ब्राह्मण बनते हैं, बेसिक नॉलेज लेने वाले या एडवांस नॉलेज लेने वाले, वो ब्राह्मण भी टोटल अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूब जाते हैं। माना उन्हें इस संसार में निविड़ अंधकार के बीच बाप कौन है, बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला कौन है, इस बात पर पक्का निश्चय नहीं रहता। बाप का निश्चय है तो बच्चा है, और बाप का निश्चय ही नहीं तो बच्चा ही नहीं। अगर बच्चा है भी तो सौतेला बच्चा होगा। बाप का बच्चा बाप को न जाने तो बाप से वर्षा कैसे लेगा? मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकता है? नहीं ले सकता। तो वो टाइम कौन सा है जो ब्रह्म वाक्य में वेदवाणी में बोला, मैं जब आता हूँ अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूँ तो दक्ष से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूँ। बार नहीं लगती। फिर बोला राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। किससे मिलती है? है अरे जीवन मुक्ति जीवन में रहकर मिलती है या बिना जीवन के मिलती है? तो जीवन मुक्ति देने वाला भी जीवन वाला होना चाहिए या मुर्दा होना चाहिए? जीवन तब बनता है जब साकार निराकार का मेल हो, निराकार आत्मा और साकार शरीर, और शरीर में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए, कोई भी प्रकार का दुख महसूस न हो, तो उसे कहेंगे जीवन मुक्ति। ऐसी जीवन मुक्ति किसने प्राप्त की एक सेकंड में? क्या गायन है? जनक ने। जनक का क्या अर्थ है? जन माने जन्म लेने, अक्का माने करने वाला। जो जन्म लेते ही सारा कार्य संपन्न करे, सारे संसार का जन्मदाता जनक, तुम सब सीताएं हो, तो उनका बाप कौन हुआ है? सीताओं का बाप कौन? जनक। तो जो बीज रूप आत्माओं का भी बाप वो ही जनक है असली, जो सब सीताओं का बाप। जब हाई जंप लगाता है तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाता है। घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि खलास होती है। सूर्य उदय की ओर जाता है, सूर्य का डूबना खलास। जो माउंट आबू में आज भी यादगार दिखाते हैं, सनसेट पॉइंट, काहे की यादगार? सूर्य के अस्त होने की यादगार। और अचलगढ़ की ओर सूर्योदय, उदय की यादगार दिखाते हैं। तो साबित हुआ कि घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में जब सारी दुनिया डूब जाती है, मनुष्य मात्र डूब जाता है, जिस समय मनुष्यों का बाप मनुष्य सृष्टि का बाप, तब उसी क्षण उदय होता है। जब पूर्णमासी का दिन भी गाया जाता है, एक ओर चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी ओर सूर्य उदय होता है। चंद्रमा हो गया पृथ्वी माता का बच्चा, वैसे भी दुनिया में चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। काहे से निकला है उपग्रह? काहे से निकलता है? ग्रह से निकलता है। तो यहां कौन सा ग्रह है जहां से चंद्रमा निकला, छटक के अलग चला गया? कौन सा ग्रह? पृथ्वी। तो पृथ्वी उसकी माता है और वो चंद्रमा जो कृष्ण चंद्र कहा जाता है, सोलह कला संपूर्ण, वो उसका बच्चा है। इसकी शूटिंग भी होती होगी, रिहर्सल नहीं होती होगी है? होती है वो जड़त्व में ही धरणी, जड़त्व में ही बुद्धि वाली, बाकी जड़ पदार्थ नहीं है, है चैतन्य आत्मा। ऐसी चैतन्य आत्मा जो जड़त्व में ही बुद्धि वाली है, उसमें ज्ञान सूर्य शिव, टाइटलधारी ज्ञान सूर्य में प्रवेश करके ब्रह्मा वाली आत्मा, दादा लेखराज वाली आत्मा को वाणी सुना देता है। क्या ब्रह्मा को साक्षात्कार होते हैं? दादा लेखराज को साक्षात्कारों का अर्थ कोई गुरु नहीं बता पाता, तो अपनी दुकान के अंतिम जन्म के भागीदार के पास जाता है। जो भागीदार लौकिक जीवन में भी भागीदार है और बेहद के जो 84 जन्म है उनमें भी भागीदार है। बाप का बड़ा बच्चा होता ही है भागीदार बाप के प्रॉपर्टी का, तो उस भागीदार के पास पहुंच करके उस साक्षात्कारों की सारी बात जिन आत्माओं के द्वारा पहुंचती है वो ही आत्माएं हैं जो महालक्ष्मी का रूप धारण करती हैं सृष्टि के आदि में। कौन आत्माएं हैं? जैसे विष्णु रूप है, राम और कृष्ण की आत्माएं 16 कला संपूर्ण, नर से नारायण बनने वाला, नर से प्रिंस बनने वाली दोनों आत्माएं स्वभाव संस्कार से मिलकर एक होती हैं, तो महानारायण कहा जाता है। ऐसे ही कोई दो आत्माएं और भी हैं सहयोगिनी शक्ति के रूप में, कौन है? नारी से नारायणी डायरेक्ट बनने वाली और नारी से प्रिंसेस बनने वाली। डायरेक्ट नारायण नहीं बनती, पहले प्रिंसेस बनती है, फिर बाद में नारायणी बनती है। और ये आत्मा को प्राप्ति, अनुभूति संगम युग में ही होती है, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह आत्मा को सतयुग में प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, संगम में ही अनुभूति हो जाती है। तो चाहे विष्णु की भुजाओं के रूप में नारायण वाली आत्मा हो, या भुजा को चलाने वाली आत्मा हो, या नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा हो, विष्णु की भुजाओं में दोनों ही आत्माएं स्वभाव संस्कार से एक देखने में आती है, दिखाई देती है, होती नहीं है। जैसे जीवात्मा, जीवात्मा जब कहा जाता है तो किन दो चीजों का मेल है? आत्मा और शरीर का मेल है। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़। ऐसे ही माता के रूप में पार्ट बजाने वाली ये दो आत्माएं हैं। एक अव्वल नंबर स्त्री चोला में पार्ट बजाने वाली आत्मा, जो नौ देवियों में पहले पहले पूजी जाती है, महागौरी, और दूसरी जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण बाप के साथ लंबे समय तक रहने के बावजूद भी वेद के बाप से लंबे समय का संग का रंग इंद्रियों का लेने के बावजूद भी बाप को पहचानती है या भूल जाती है? भूल जाती है। तो बुद्धि को जड़त्वमयी कहें या चैतन्य कहें? जड़त्वमयी बुद्धि। ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि का पार्ट बजाने वाली आत्मा नौ देवियों में अंतिम देवी के रूप में पूजी जाती है। कौन? महाकाली। एक महागौरी अव्वल नंबर और लास्ट नंबर महाकाली। एक कही जाती है आत्मिक रूप में जगदम्बा और दूसरी कही जाती है दैहिक रूप में जगदम्बा। उसको धरणी का भी कह सकते हैं, क्योंकि पांचों तत्व में प्रधान तत्व कौन सा है? धरणी। धरणी माता कही जाती है। जो धरणी है वो माता जड़त्वमयी बुद्धि वाली है, चैतन्यता उसमें नहीं है बौद्धिक रूप में। इसलिए वो ही माता निमित्त बनती है, वाचा के द्वारा वाणी सुना करके सच्चुकी कृष्ण को कृष्ण के रूप में अनुभूति कराने वाली कि तुम्हें सच्चुकी नहीं सच्च में कृष्ण के रूप में पार्ट बजाना है। लेकिन जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसको असली अनुभूति तो तभी होगी जब वो अपने बाप को पहचाने। तो क्या पहचाना है? नहीं पहचाना। 36-37 में भी नहीं पहचाना, अगले 8-10 साल में भी कहें नहीं पहचाना। पहचाना हुआ तब कहें जब उस आत्मा को ये पक्की अनुभूति हो गई कि मैं आत्मा सतयुग में जाकर के सृष्टि का पहला पत्ता बनूंगी। लेकिन ये तो बुद्धि में आता है कि वृक्ष का पहला पत्ते को भी जन्म देने वाला कौन होता है? बीज होता है। बीज को चैतन्य रूप में नहीं जान सकी। और जब थोड़ी अनुभूति होती है बीज के उस पार्ट की जिससे बीज में कोई कोई बीज होते हैं प्रवृत्ति मार्ग के दो दल वाले हैं, जैसे चना मटर तुवेर, ऐसे ही जो प्रवृत्ति मार्ग का बीज है नर से नारायण बनने वाली आत्मा और नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा, ये द्विदल हैं मनुष्य शक्ति के मूल बीज। उनमें से माता को पहचान लेती है। क्या? किसको पहचान लेती? जिस माता के द्वारा उसे ये पक्की अनुभूति होती है कि इस जन्म में तो मैं नहीं बनूंगा, नई दुनिया का मालिक, लेकिन आगे जो सतयुगी जन्म आने वाला है उसमें मैं नई सृष्टि का प्रिंस बन करके मालिक बन जाऊंगा। तो असली वर्षा कौन सी माता से मिलता है? उसी माता से जो माता के रूप में देह मात्र नहीं है। क्या? देह में भावना होती है। देह के पांच तत्वों का जो संघात शरीर है उसमें भावना होती है? नहीं होती। भावना आत्मा की चीज है या देह के पांच तत्वों की चीज है? आत्मा की चीज है। तो जगत माता के रूप में जो देह वाली आत्मा है वो वाणी के द्वारा, जो देह का अंग है, वाणी किसका अंग है? देह का अंग, जिसे वाक देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचा की देवी, माने उसको वाचा में कोई हरा ही नहीं सकता। ऐसी वाचा की देवी अनुभूति नहीं करा पाती पक्की, लेकिन जो भावना की भी देवी है, देह तो होती ही है लेकिन मुख्य क्या है उसमें? भावना, आत्मिक स्टेज वाली, वो आत्मा दादा लेखराज वाली आत्मा, कृष्ण की आत्मा को असली परिचय बाद में देती है, शुरुआत में नहीं। पहले समझा जाता है बात को, फिर समझाया जाता है, या जैसे ही सुनाते हैं सुनते हैं वैसे ही समझाया जाता है।
पहले समझा जाता है,
सुनने के बाद समझने में टाइम देना होता है, पक्का पक्का समझने के बाद फिर दूसरों को समझाया जाता है। तो वो बात पक्की करने में उस चैतन्य माता को टाइम लग जाता है समझने में। जो साक्षात्कारों की रहस्य सुनाया गया भागीदार के द्वारा, कि कृष्ण का साक्षात्कार हुआ माने तुम्हें कृष्ण बनना है, सफेद पोस्ट ब्राह्मण का साक्षात्कार हुआ माने तुम्हें ब्रह्मा के रूप में अभी पार्ट बजाना है, विनाश का साक्षात्कार हुआ माने विनाश होने वाला है, स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ माने नई दुनिया आने वाली। तो इन साक्षात्कारों का निचोड़ ये निकला कि दादा लेखराज वाली आत्मा आने वाली नई दुनिया में बच्चे बच्चा बनेगी, किसका बच्चा बनेगी है? जो नारायण और लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी का गायन है, उन आत्माओं का बच्चा बनती है। सतयुग में तो बाद में बनेगी, वो बच्चा बनने की आत्मा में शूटिंग कब होती है? है? संगम में हो जाती है। तो सन 47 में वो शूटिंग हुई, जब ब्रह्मा की आत्मा ने ये पक्का कर लिया क्या कि मुझे इस सृष्टि पर ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है। और शिव बाप का कहना भी है ब्रह्म वाक्य में, मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो क्या दादा लेखराज का नाम सन 36-37 से ब्रह्मा पड़ गया था? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। सन 47 से ये प्रूफ मिलता है। पहले ब्राह्मणों के संगठन का नाम ओम मंडली था, और बाद में सन 47 में वो नाम बदल गया, ब्राह्मणों की दूसरी सृष्टि तैयार हुई और उसका नाम ब्रह्मा के नाम पर ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता कहां से आ गया उस समय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। तो ये ब्रह्मा के द्वारा दूसरी सृष्टि की स्थापना हुई। इससे साबित होता है कि जो जीवात्मा के रूप में मनुष्य सृष्टि की माता है, वो माता मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उससे पूरी जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है? क्योंकि माता पिता जब तक आपस में पूरे जुड़ते नहीं हैं, जिसे कहते हैं प्रवृत्ति, प्रकट वृत्ति, वृत्ति माने घेरा, चारों ओर से एक दूसरे को जकड़ लें, वृत्ति बन जाए, तब सृष्टि तैयार होती है। तो वो कृष्ण रूपी बच्चा आत्मिक रूप में निश्चय बुद्धि माता का बच्चा हुआ, बाप का बच्चा, बाप को पहचान है? नहीं पहचान। तो ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की सोल माँ को पहचानती है, लेकिन बाप को नहीं पहचान पाती। इसलिए ब्रह्मा से दादा लेखराज जिन्हें कहा गया, उनसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रचना होती है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहे जाते। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी तब कहे जाते हैं जब ब्राह्मणों की दुनिया में वो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। आदि में भी प्रत्यक्ष थी, लेकिन जैसे दुनिया में बच्चे नहीं जानते हैं, छोटे छोटे दूध मोहे बच्चे जानते ही नहीं मेरा बाप कौन है, ऐसे ही ब्राह्मणों की सृष्टि में भी जो ईश्वरीय बच्चे तो हैं, लेकिन अबोध हैं या उन्हें सगीर कहें, बालिक बुद्धि है या नाबालिक बुद्धि, नाबालिक बुद्धि, छोटे छोटे बच्चे माँ को ही सब कुछ समझते हैं, बाप को तो जैसे जानते ही नहीं। तो अभी तक भी वो ब्रह्मा की गोद में बैठ करके नॉलेज लेने वाली आत्माएं अम्मा को जानती हैं या बाप को भी जानती हैं? अम्मा को जानती हैं, ब्रह्मा को जानती हैं, बाप को नहीं जानती, क्योंकि जो ब्रह्मा नामधारी हुआ वो खुद ही बाप को नहीं जानता। तो बुद्धि के हिसाब से बुद्धिहीन बच्चे के हैं या बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे के हैं? बाप अपना वर्षा बुद्धिहीन नाबालिग बच्चों को देता है या बुद्धि जब परिपक्व हो जाती है बाप की पालना लेते लेते तो बालिग बुद्धि बच्चों को देता है? बालिग बुद्धि बच्चों को देता है। अभी तक भी देख सकते हैं और नाबालिग बुद्धि बच्चों से पूछो, तुम ये तो बताते हो कि तुम्हारे ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला ब्रह्मा है, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है भगवान या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है? तो बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारी दोनों की पैदाइश करते हैं या सिर्फ कुमारियों की या कुमारों की करते हैं? दोनों की करते हैं। इससे साबित होता है कि जो पैदाइश करने वाले हैं वो भी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में होने चाहिए। पुरुष जो है वो शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाला है, जैसे यादगार दिखाई जाती है विष्णु। विष्णु का चित्र देखा कहाँ लेटा हुआ है? सर्प सर्पणियों की शैया पर लेटा हुआ है। फिर उसको कोई बेचैनी महसूस होती है? सभी हमारी रजाई में एक सांप लंबा लंबा घुस जाए तो हमको क्या लगेगा, बेचैनी होगी या चैन से सोते रहेंगे? हैं? बेचैनी अनुभव होगा। तो मनुष्य सृष्टि में कोई ऐसी पार्टधारी आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करके विष्णु पद प्राप्त करती है, वो है ऊंचे ते ऊंच पद। पुरुष रूप में दिखाते हैं या स्त्री रूप में दिखाते हैं विष्णु को? पुरुष रूप में दिखाते हैं। और ऐसे तो विष्णु के आसपास सभी देवताएं खड़े हुए हैं, लेकिन विशेष सहयोगी के रूप में कौन दिखाया जाता है? है लक्ष्मी दिखाते हैं जो बुद्ध रूपी पांव को दबाती है। बुद्ध रूपी पांव दर्द होता है उनको, देह अभिमानी को दर्द होता है या आत्माभिमानी को दर्द होता है? देह अभिमानी को दर्द होता है। तो कौन सा दर्द होता है विष्णु को जो लक्ष्मी पांव दबाती है? अरे जो टांग है पांव है जड़ शरीर का अंग है उसे दबाने की बात है या बुद्ध रूपी पांव दबाने की बात है? है ये बुद्ध रूपी पांव आत्मा की बात है कि वो आत्मा इस संसार में जो बाप के रूप में पार्ट बजाती है सारी समूची सृष्टि का, उसके लिए ब्रह्म वाक्य है, वेदवाणी कही गई है ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, कि भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। वो रोने वाला भगवान, ये कैसा भगवान? भगवान भी रोता है, है? भगवान रोता है क्या? अरे भगवान सुख का सागर है या रुलाने वाला रावण है? है भगवान तो सुख का सागर है, वो कैसे रुलाने वाला होगा? जो रुलाने वाला होगा वो खुद भी रोता होगा या नहीं रोता होगा? है इच्छा मात्र अविद्या होगा या इच्छाओं से भरपूर होगा? है ये बड़ी सुंदर चीज है, ये मिल जाए, ये सीता बड़ी सुंदर है, ये मिल जाए, वो बड़ी सुंदर है, वो मिल जाए, तो इच्छा मात्रम अविद्या हुआ, संपूर्ण ज्ञानी हुआ या शैतान हुआ? शैतान है। वास्तव में जो बाप है मनुष्य सृष्टि का और साकार में निराकार में बाप है, आत्मा और शरीर दोनों का मेल है या एक का मेल है? है वो आत्मा पुरुषार्थ करके संपन्न आत्मा बनती है। कैसी आत्मा बनती है? संपन्न माने शिव बाप का कहना है कि मैं जब इस धरा पर आता हूँ तो तुम बच्चों को आप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाता हूँ। तुम बच्चों को माने आत्माओं को या शरीरों को? आत्माओं को निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आप समान अपने समान बनाता हूँ। तो बच्चों में बड़ा बच्चा कौन है? आत्मा रूपी बच्चों में बड़ा बच्चा कौन? कोई तो है। जो बड़ा बच्चा है उस बच्चे को शिव बाप आकर के क्या बरसा देता है? निराकार बाप है, निराकारी आत्माओं का बाप है, तो निराकारी बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा देते हैं। वो निराकारी बाप निराकारी ज्ञान का अखूट भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं, और आत्माओं में जो ज्ञान होता है वो इस सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आते आते क्या होता है? खुद जाता है, खलास हो जाता है या संपूर्ण ज्ञान बना रहता है? खलास हो जाता है। इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर होती जाती है और कमजोर आत्मा में सारा ज्ञान उड़ जाता है। तो देखो वो अकूट ज्ञान का भंडार कैसे अकूट ज्ञान का भंडार बनता है? वो अकूट ज्ञान का भंडार बनता है जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण। उसको अपनी देह नहीं है, देह न होने के कारण उससे के द्वारा पुण्य और पाप बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसको देह होगी वो देह के द्वारा ही पाप और पुण्य कमाएगा कि बिना देह के? देह के द्वारा कमाता है। तो वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। कौन? शिव बाप। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, उसके शरीर का नाम नहीं। और आत्माओं के शरीर का नाम होता है। तो वो शिव ज्योति बिंदु निराकार बाप जो निराकारी वर्षा देता है ज्ञान का, वो वर्षा अपने छोटे छोटे बच्चों को देता है, मझले बच्चों को देता है या बड़े से बड़े बच्चे को देता है। दुनिया में क्या परंपरा है, मनुष्यों में, राजाओं में क्या परंपरा है, राजाओं ने हिस्ट्री को देख लो, खास करके भारतीय राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया। ये परंपरा कहाँ से चली? भगवान बाप जब आते हैं तो दुनिया में जितनी भी परंपराएं चलती हैं, उन परंपराओं का फाउंडेशन अभी पड़ता है। अच्छी परंपराओं का फाउंडेशन जो आत्माओं का बाप है उसके ज्ञान के अनुसार पड़ता है, और बुरी परंपराओं का फाउंडेशन जो मनुष्य नर कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, नर, वो नरक बनाने वाला मनुष्य आत्माएं वो दुख का वर्षा देती है। भगवान सुख का वर्षा देता है ज्ञान सुना करके। लड्डू पेड़ा महल माड़िया नहीं देता, क्या देता है, ज्ञान देता है। तो सबको एक जैसा क्यों नहीं देता, बड़े बच्चे को ही क्यों देता है, है? एक जैसा देता है, है? वो त्रिकालदर्शी है ना, तीनों कालों को जानता है ना, तो वो त्रिकालदर्शी शिव बाप इस सृष्टि में कौन सी मनुष्य आत्मा है जो हीरो के रूप में अच्छा ही अच्छा पार्ट बजाती है? क्या विलियन का पार्ट, शैतान रावण का पार्ट नहीं बजाती है? जन्म जन्मांतर धैर्य धारण करती है, छोटे भाइयों आत्मिक रूप में मनुष्य आत्माओं की दुर्व्यवहार को सहन करती है, और जहां जरूरत है वहां अगर कमजोर और छोटे भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है तो मुकाबला भी करती है विधर्मियों और विदेशियों के साथ। ऐसी आत्मा को वो ऊंचे से ऊंचा भगवान, जो ऊंचे से ऊंचा आत्मा है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, वो जानती है या नहीं जानती है? जानती है, और उसी आत्मा को मुकर्रर रथ के रूप में चुनती है। मुकर्रर का मतलब क्या,
पहले से तय किया हुआ।
मुकर्रर का मतलब है आदि से लेकर के शूटिंग पीरियड के अंत तक उसी आत्मा के शरीर के द्वारा उसे पार्ट बजाना है। चाहे बीज बोने वाला बाप का पार्ट हो, मध्य में सुप्रीम टीचर का पार्ट हो, और अंत में सदगुरु का पार्ट, तीनों ही पार्टधारी एक ही आत्मा है जो साकार में पार्ट बजाती है। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। उस आत्मा के द्वारा पार्ट तो बजाती है, कैसा पार्ट, है उस आत्मा के द्वारा सुप्रीम सोल शिव सदाकाल पार्ट बजाता है या अल्पकाल पार्ट बजाता है? सदाकाल पार्ट बजाता है शिव, ज्योति बिंदु निराकार जिसको अपना शरीर ही नहीं, वो बोलता भी है, ब्रह्म वाक्य से बोलता है, वेदवाणी जिसे कहा जाता है, ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, उस वाणी के द्वारा ही बताता है क्या है? हाँ, वो तो दिव्य जन्म की बात हुई कि मेरा जन्म भूत प्रेतों की तरह नहीं है, मनुष्यों की तरह नहीं है, देवताओं की तरह नहीं है, गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा जन्म दिव्य है, लेकिन मैं सिर्फ अनासक्त पार्ट बजाता हूँ, जिस शरीर में रह करके पार्ट बजाता हूँ उसमें मेरी कोई आसक्ति आसक्ति नहीं है। दुनिया के हर संबंध में, पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, आसक्ति जरूर होती है, लेकिन मुझे किसी से कोई लगाव अटैचमेंट नहीं है, तो मैं ऐसा पार्ट बजाता हूँ। फिर बोला कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है, ये नहीं कहा सदा कायम शिव बाप है, क्योंकि बोलता है मैं तो आत्माओं का बाप हूँ, बाबा माने ग्रैंडफादर नहीं हूँ, और संबंध बाबा पर बाबा, बहन भाई, पत्नी, टीचर, ये तब बनते हैं जब साकार में प्रवेश करता हूं। तो इस सृष्टि पर सदा कायम मेरा पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट है? है शिव बाबा, आत्मा और शरीर दोनों का मेल शिव बाबा कहा गया, तो वो शिव बाबा की यादगार आज भी मंदिरों में बनी हुई है, देश में, विदेश में, और जो भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां मिली हैं, जिन लिंग मूर्तियों का सात्विक रूप द्वापर युग के आदि में सोमनाथ मंदिर में देखा गया। सोमनाथ मंदिर में लिंग पत्थर का था और उस पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था, वो यादगार है उस शिव बाबा की। क्या क्या लिंग रूप में लुढ़कता रहता है इस दुनिया में 84 जन्म? है नहीं, साकार शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है वो आत्मा, लेकिन वो आत्मा ऐसी आत्मा है कि भगवान जब आकर के विश्व का बादशाह बनने की युक्ति बताता है, राजयोग सिखाता है, योग सिखा करके ऊंचे से ऊंचा राजा बनाता है, उस युक्ति को उस आत्मा ने उस संगम युग के काल में जब भगवान शिव आते हैं उस युक्ति को सबसे जास्ती धारण किया बुद्धि में, बुद्धि में क्यों है? प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है। शरीर ने धारण नहीं किया है? अरे शरीर जो पांच तत्वों का जड़ पुतला है, उस जड़ पुतले ने धारण नहीं किया किया?
विनाशी तो आदमी तो विनाशी हो जाए, बुद्धि तो हद में रहेगी।
ऐसा लक्ष्मी का पार्ट जड़ शरीर है संगम युग में या नहीं है? लक्ष्मी पार्टधारी को जड़ शरीर है तो प्रैक्टिकल जीवन में जो शिव की बड़े से बड़ी शिक्षा है वो क्या है? है? हम बोर्ड में लिख के टांगते हैं 20 जगह नहीं, वो तो परीक्षा है। पवित्र बनो योगी बनो, ये पवित्र रहने की बात शरीर के साथ लागू होती है या सिर्फ मन बुद्धि की बात है? तो जो लक्ष्मी वाली आत्मा है, महागौरी जिसे टाइटल मिलता है, वो शरीर से पवित्रता को धारण करती है या विविचारणी बनती है? है धारण करती है। जन्म जन्म लगे अगर हमारी बरों शंभु न तु रहो कुंवारी, एक आत्मा के साथ शारीरिक संबंध जन्म जन्मांतर का है। किस आत्मा के साथ है? हाँ, उस आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर का संबंध है जो आत्मिक रूप में शिव बाप के अखूट भंडार ज्ञान को धारण करती है। आत्मिक रूप माने मन बुद्धि के द्वारा, देह में नहीं, देह के आधार पर प्रैक्टिकल में विषपाई का पार्ट बजाती है या पवित्रता का पार्ट बजाती है? हाँ? देह के आधार पर, देह के आधार पर, देह की इंद्रियों के आधार पर पवित्रता का पार्ट बजाती है या संसार में और भारत में खास ये प्रसिद्ध है कि भारतवासियों का भगवान 16,000 पत्नियां रखता है। तो जो 16,000 गोप गोपियां गाई हुई हैं गुप्त संबंध जोड़ने वाली भगवान के साथ, वो 16,000 आत्माएं अपने आगे पीछे के जन्मों में एक भगवान की ही पत्नी बनकर रहती हैं पार्वती की तरह, या औरों की भी पत्नियां बनती हैं? तो पराई स्त्री को भोग करने वाला विषपाई नहीं हुआ, पराई स्त्री या पर पुरुष का भोग करने वाला विषैला हो जाता है और विष से मृत्यु हो जाती है। क्या दुनिया का सबसे जास्ती विषैला कौन हुआ और कब हुआ है? सृष्टि का जब महाविनाश होना होता है तो वो ही आत्मा है जो बड़े से बड़ी विषैली बन जाती है और सारे संसार का विनाश का निमित्त बनती है। कौन? शंकर। वो रसिया के एटम बम बनाने वाले देहंकारी वैज्ञानिक नहीं, वो तो बनाते हैं लेकिन उनको फोड़ने की ताकत उनके अंदर हिम्मत ही नहीं। लेकिन ऐसी आत्माओं में भी प्रवेश करके वो विष पाई, उन वैज्ञानिकों की बुद्धि को भी पलट देता है, वो एटमिक एनर्जी को फोड़ने की हिम्मत दिला देता है। इसलिए इस सृष्टि का विनाशकारी कौन गाया हुआ है? शंकर गाया हुआ। वैसे इस समूची सृष्टि को पतन के गर्त में लेने वाले धर्म पिताएं हैं, चाहे ब्राह्मण धर्म का कुलदेवता गाया हुआ हो ब्रह्मा, और चाहे इब्राहिम, चाहे बुद्ध, चाहे क्राइस्ट या उनके सहयोगी धर्म पिताएं, वो सारा समूची सृष्टि का विघटन करने वाले, विनाश करने वाले तो हैं, लेकिन संपूर्ण विनाश कोई भी नहीं करता। संपूर्ण विनाश सिर्फ एक ही है, जो विनाश गाया हुआ है अपवित्रता के आधार पर, शारीरिक अपवित्रता या आत्मिक अपवित्रता। कैसी अपवित्रता? आत्मिक अपवित्रता, शरीर से अपवित्र नहीं होता, शरीर से भी, शरीर की इंद्रियों से भी अपवित्र तो होता है ना। शरीर की इंद्रियों से अपवित्र होता है तो आत्मा भी अपवित्र हुई या नहीं हुई? आत्मा भी अपवित्र, आत्मा और शरीर दोनों ही अपवित्र। इसलिए सुप्रीम सोल बाप बच्चों को बार बार ताहना देते हैं। क्या ताहना देते हैं? है अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। जब मनुष्य शक्ति का पिता ही जो ज्ञानामृत मिल रहा है उस ज्ञानामृत का संपूर्ण उपयोग नहीं करता, जानता है ये 16,000 कन्याएं माताएं गोपियों के रूप में जो गुप्त संबंध भगवान के साथ जोड़ने वाली है, वो जन्म जन्मांतर पराई स्त्रियां हैं, जानता है या नहीं है? फिर भी उनके साथ संबंध जोड़ता है या नहीं जोड़ता है? है? नहीं जोड़ता है? जोड़ता है। इसलिए बताया कि वो महाविनाशकारी है, और वो महाविनाशकारी तब तक है जब तक भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, वो नारा संसार में नहीं लगाया जाता। सोलह हजार कन्याओं माताओं में से जो कन्या रूप में मनुष्य सृष्टि की पार्ट बजाने वाली कोई हीरोइन है, वो जब तक सहयोगी नहीं बनती है पवित्रता के पुरुषार्थ के मामले में, तब तक कोई मनुष्य आत्मा राजधानी की स्थापना में पूरी सहयोगी नहीं बन सकती, विघ्न बनकर रहेगी, संपूर्ण सहयोगी बनकर नहीं रह सकती। ये बना बनाया ड्रामा है, हर भ्रकुटी के मध्य में जो आत्मा रूपी रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी भरा हुआ है कल्पांतर का, और वो ही पार्ट 5000 वर्ष के ड्रामा में बजता रहता है। तो 5000 वर्ष जो षष्ठ रूपी चक्र है, इस चक्र में पवित्रता के मामले में जिसे कहते हैं शरीर की भी पवित्रता और आत्मा की भी पवित्रता। आत्मा की पवित्रता के रूप में एक ही देवता है जो त्रिनेत्री दिखाया जाता है, शिव नेत्र उसे कहते हैं। जो शिव नेत्र बंद ही रहता है, क्या 5000 साल बंद रहता है या खुला रहता है? है बंद ही रहता है, और जब खुलता है, है? जब खुलता है तो क्या होता है, सारी सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो वो ज्ञान नेत्र खुलने का क्या मतलब हुआ है? ज्ञान का कौन सा पॉइंट है जो खुल जाता है पहले पहले उस आत्मा के लिए? है नहीं पता चला? अरे रोज अनुभव करते हैं, बेसिक वाले ब्राह्मण भी और एडवांस वाले ब्राह्मण भी रोज अनुभव करते हैं। है मैं आत्मा ज्योति बिंदु अनुभव करते हैं 24 घंटे। अरे तो क्या फायदा, निरंतर अनुभव करें वो बात, या क्षण दो क्षण अनुभव कर लिया तो स्थाई कहा जाएगा? है
सही।
तो अनुभव नहीं कर पाते क्या कि हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माएं हैं? कैसी आत्माएं? भोगी आत्माएं। भोग के बगैर हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रह नहीं सकती। हमें इंद्रियों का भोग जरूर चाहिए, सतयुग का पहला जन्म भी हो तो भी। है श्रेष्ठ इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय कम से कम आंख का भोग जरूर चाहिए। अगर अभोक्ता बन जाए कोई आत्मा तो उसे क्या कहा जाएगा, किसके समान कहा जाएगा? शिव बाप के समान कहा जाएगा। तो जो अव्वल नंबर आत्मा है, जिसे अल्लाह अव्वल दीन मुसलमानों में नाम दिया कि वो अव्वल नंबर धर्म पिता है, जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, सत्य सनातन धर्म। वो सत्य सनातन धर्म कभी सृष्टि पर लोप नहीं होता। क्या लोप होता है? कभी लोप नहीं होता। तो उसका स्थापन करने वाला सत्य सनातन धर्म को जागृत करने वाला पिता लोप होता होगा?
नहीं।
वो भी नहीं लोप हो सकता। न सत्य सनातन धर्म का लोप होता है, न सत्य सनातन धर्म की जो भूमि है कौन सी है, भारत भूमि, उसका भी लोप नहीं होता है। सिर्फ जड़ भूमि की बात है या ताश बजाने वाली जो आत्माएं हैं उनमें जड़त्व में ही किसी आत्मा की भी बात है, है? इस मनुष्य सृष्टि में पांच जड़ तत्वों का लोप होता है, कभी नहीं होता। 100% तामसी बन सकते हैं, पर कभी तामसी बनेगी तो बड़े बड़े भूकंप लाएगी जिसमें दुनिया के एक मंजिल से लेकर के सैकड़ों मंजिल जो मकान बने हुए हैं वो सब धराशायी हो जाएंगे और उन्हीं मकानों में मनुष्य रहते हैं, तो सारी मनुष्य शक्ति का विनाश हो जाता है। ऐसा है वो जड़त्वमयी तत्व, इतनी ताकत है। माता है या पिता है? है माता है, और वो माता भारत की है या विदेशी है? कौन है जो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है? बुद्ध रूपी धरणी जड़ है, टोटल जड़ है जगदम्बा। लेकिन जगदम्बा में भी जो आत्मा है, जो जगदम्बा किसकी बेटी कही जाती है? अरे जगदम्बा बेटी है कि नहीं है? जगदम्बा भी बेटी है ना, जैसे माया बेटी है, जगदम्बा भी, जगदम्बा भी बेटी है। तो वो बेटी का बाप कौन, कोई होगा या नहीं होगा? हाँ, जो जड़त्वमयी जगदम्बा है उस जड़त्वमयी जगदम्बा का बाप ऐसा बाप है जो भारत में आज भी पूजा जाता है लिंग के रूप में। लिंग जड़ है या चैतन्य है? लिंग जड़ है। पांच तत्वों का बीज रूप संघात है इस मनुष्य सृष्टि में। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन पांचों तत्वों का संघात उस बीज रूप में समाया हुआ है। जितने भी जड़ बुद्धि प्राणी हैं उन सब का वो रचयिता है। रचना रचने वाला रचयिता एक गाया हुआ है या दो रूपों में गाया हुआ है? एक। प्रैक्टिकल में एक रचयिता है, बच्चा या बच्ची पैदा होती है रचना के रूप में, तो प्रैक्टिकल में कौन दिखाई देता है, किसने रचा? माता ने रचा। बाप ने सिर्फ बीज डाला है, बीज बोया, लेकिन उसको वृक्ष के रूप में पालन किसने किया? तो जिसने पालन किया वो बड़ा कहा जाए, ज्यादा मेहनत वाला कहा जाए, या जिसने बीज बोया वो बड़ा कहा जाए? बीज बोया वो बड़ा कहा जाए। बड़े आराम से जवाब दे दिया, बीज बोना बड़ा काम है। वो बड़ा काम नहीं है। बीज बोना क्यों बड़ा काम नहीं है? है बड़ा काम इसलिए नहीं है, जैसे जो सुप्रीम सोल बाप है उसका जब टाइम होता है और इस मनुष्य सृष्टि में नंबर बार बच्चे आवाहन करते हैं, आओ, बल बुलाने पर नहीं आता है, लेकिन उसी टाइम आता है जो उसका सशक्त बच्चा 84 जन्मों में कभी हार नहीं खाता, भक्तों की तरह कभी बुलाता नहीं, किसको? भगवान बाप को। सदा ज्ञानी है, इसलिए नाम ही है नारायण, अयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। भारत क्या नाम है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है। संगम युग में भी जब से पहचान होती है आत्मा की, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तब से लेकर संपन्न होने तक भी और सच्ची का विनाश होने तक भी, और ब्रॉड ड्रामा में भी सतयुग त्रेता में तो बीज रूप स्टेज में रहता ही है अन्य देवताओं की तरह, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी कलयुग के अंत तक भी सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करने के रूप में कौन से ऋषि मुनि रूपी मनुष्य का नाम है जिसने सबसे जास्ती शास्त्र लिखे? व्यास भी माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष रूप में बैठ गया, जन्म जन्मांतर के लिए बैठ गया। मनन चिंतन के आधार पर वाइब्रेशन से, भावना से, संकल्पों से भी, शुद्ध संकल्पों के आधार पर नई सृष्टि दुनिया को कल्याणकारी बनाने के लिए बैठा रहता है। द्वैतवादी द्वापर युग में भी और धर्म पिताएं तो द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें पैदा कर देते हैं, लेकिन वो आत्मा द्वैतवाद का वहां भी खंडन करती है। द्वैतवाद को पसंद नहीं करती। अद्वैत को देवता कहा जाता है, आ माने नहीं, द्वैत माने दो, नहीं चाहिए दो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो बाप का वो बड़ल्ला बच्चा आदि से लेकर के अंत तक विधर्मियों से, विदेशियों से टकराता रहता है। मानसिक रूप से भी, मन के श्रेष्ठ संकल्पों के रूप से भी धर्म युद्ध भी करता रहता है, और प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा हिंसक युद्ध भी करता है, और हमेशा विजयी होता है या हार खाता है। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे चरित्र हुए हैं भारतवर्ष में जिन्होंने कभी विदेशियों से हार नहीं खाई, और कलयुग के अंत तक ये क्रम चलता रहता है। सच्चाई का पक्ष लेने के लिए सत्य बाप का सच्चा बच्चा, उसे सत्य कहा जाए या असत्य कहा जाए? है सत्य की क्या पहचान? सत्य सदाकाल रहता है, विनाश में भी उसका अंत नहीं होता। वो कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सबको खा जाएगा, लेकिन उसको कोई काल के गाल में जाते हुए इन आंखों से देखेगा ही नहीं। ऐसा सत्य, अविनाशी सत्य जो गीता में भी प्रसिद्ध है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता, वो सत्य परमात्मा इति उदाहरत गीता में कहा गया है। इसीलिए परमपिता शब्द के साथ परमात्मा जोड़ा जाता है, शिव के साथ शंकर जोड़ा जाता है। दुनिया में और कोई मनुष्य आत्मा नहीं, कोई देवता नहीं, कोई राक्षस नहीं, कोई मनुष्य नहीं, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। माना बड़े का नाम पहले, बच्चे का नाम बाद में। आज भी परंपरा चल रही है दुनिया में, बाप का नाम डालेंगे फर्म में, फिर लिखेंगे एंड सन्स कंपनी, बच्चों का नाम नहीं डालते। तो ऐसा बच्चा इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, सदा कायम तो रहता है, लेकिन सदा कायम रहने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए, सत धर्म की संपूर्ण इस सृष्टि पर स्थापना करने के लिए धर्म के धक्के भी खाने पड़े हैं या नहीं खाने पड़े? जितने भी धर्म पिताएं हुए, कोई की भी हिस्ट्री को देख लो, सबने धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? ऐसे ही इस मनुष्य शक्ति का जो समूचा परिवर्तन करने वाला पिता है, वो धर्म के धक्के खाता रहता है, खाता रहता है, तब तक खाता रहता है जब तक इस समूची सृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। भले गायन है विश्वनाथ, विश्व की बादशाही लेने वाला, या विश्व की बादशाही बच्चों को देने वाला, लेकिन उसको ताज दिखाते हैं, ताजदारी के रूप में दिखाते हैं, या बेताज बादशाह है? पार्वती को फिर भी ताज है, पवित्रता का ताज कहो, पवित्र दुनिया की स्थापना का ताज कहो, लेकिन शंकर को कोई ताज नहीं दिखाते। तो ताज भी धारण नहीं करता, बच्चों को ताज प्रैक्टिकल में देता है। विश्व की बादशाही कोई अकेले संभाल सकता है? हा? बिना सहयोगियों के नहीं संभाल सकता। इसलिए शास्त्रों में भी आठ दिग्पाल गाए हुए हैं। दिग माने दिशा, आठ दिशाओं को पालने वाले आठ दिग्पाल, चार दिशाएं तो प्रसिद्ध हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उनके कोने भी चार हैं। वो आठ दिशाओं के पालने वाले दिग्पाल ही अष्ट देव कहे गए हैं, जिन अष्ट देवों को मुसलमान धर्म में भी आठ फरिश्ताओं के रूप में मानते हैं। उनके शास्त्र में लिखा हुआ है कि खुदा के तत्व को आठ फरिश्ताओं ने उठाया। हमारे यहाँ कोई यादगार है भारत में? है? कोई यादगार नहीं क्या? तख्त को उठाने की यादगार है रथ यात्रा। नाम भी है जगन्नाथ की रथ यात्रा। किसका नाथ? सारे जगत का नाथ। क्या खाता है और क्या खिलाता है, है? 36 प्रकार के भोग नहीं खाता है श्रीनाथ दरबारे की तरह, जहाँ कृष्ण की पूजा होती है। सादा भोजन, सादा पहनावा, सादा रहन सहन, जो सुप्रीम सोल बाप का कहना है कि मैं तुम बच्चों को बहुत अच्छा अच्छा भोजन नहीं खिलाऊंगा, बहुत सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र भी नहीं पहनाऊंगा, बड़े बड़े महलमाणियों अटारियों में भी नहीं रखूंगा, लेकिन सादा भोजन, कपड़ा और मकान की कमी नहीं होगी। भले सारी दुनिया में कितना भी भयंकर अकाल पड़े, लेकिन मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। ऐसा भी ताज बादशाह गाया हुआ है, इसलिए बोला ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं स्वर्ग की। कौन से ब्रह्मा के द्वारा? मूर्तियां बनाई जाती हैं ब्रह्मा की, जिन्हें पंचमुखी महादेव कहा जाता है। चौमुखी महादेव भी कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा के जो फॉलोअर्स हुए, ब्राड ड्रामा की जो शूटिंग काल संगम युग है, उन्होंने ब्रह्मा के चित्र दिखाई दिए चार मुखी पंचमुखी ब्रह्मा के रूप में। विष्णु के जो फॉलोअर्स हुए, उन्होंने विष्णु को चार भुजाएं दिखाई दी, और शिव के जो गिने चुने फॉलोअर्स हैं, एकलिंग स्वामी, वो शिव की मूर्तियों में आज भी वो मूर्तियां मिलती हैं। यदा कदा मंदिरों में जो चार भुजाओं वाला शंकर दिखाते हैं, पंचमुखी महादेव भी दिखाते हैं लिंग रूप में, तो वास्तविकता तो यही है कि वो पांच धर्म हैं इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जिस झाड़ की पांच डालियां दाईं ओर मुड़ी हुई हैं, उनमें से बौद्धि भारतीय है, सन्यासी भारतीय है, सिख भारतीय है, और आर्य समाज भी भारतीय है। ये तो चार हुए, और पांचवा है उन सब का मुखिया। जिसे कहते हैं युधिष्ठिर, आदि से लेकर के अंत तक युद्ध में स्थिर रहता है, हिलता नहीं, अटल अडोल पार्ट बजाता है। माया बेटी और धरणी जगदम्बा रूपी माता, दोनों मिल जाते हैं, जो महाशक्तियां कही जाती हैं, वो भी मिलकर सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए प्रैक्टिकल में निमित्त बनती हैं। असुर संहारिणी गाई हुई हैं देवियां, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसे प्रकृतिपति कहा जाता है, मायापति कहा जाता है, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? कि अगर बाप जिंदा है तो परिवार बन सकता है या नहीं बन सकता है? बन सकता है। अकेला बाप, अकेला बाप परिवार बनाएगा? बनाएगा है? नहीं। तो दिखाया है शिवलिंग, उसमें जो लिंग रूप है वो पार्थिव है। क्या क्या है? मुर्दे के समान है, जड़ है, शरीर की यादगार है। जो शरीर कर्म करता है लेकिन ईश्वर का ज्ञान का वो पॉइंट वो शरीर से धारण नहीं कर सकता। कौन सा पॉइंट है? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इसलिए इसलिए क्योंकि वो जड़त्वमय शरीर एक ही बीज रूप शरीर है सारी मनुष्य सृष्टि का, जो पांचों तत्वों का संघात बीज रूप है, परम ब्रह्म है, ब्रह्मा के रूप में है। तो क्या उस परम ब्रह्म में शिव ज्योति बिंदु पिता के रूप में विराजमान है? जो सोमनाथ मंदिर में हीरे के रूप में दिखाया है? विराजमान है या नहीं है? नहीं है। नहीं है तो शिवलिंग क्यों कहा जाता है?
संपन्न स्वरूप को ले लेते हैं तो पिता का नाम मिलता है।
हाँ,
सब पिता का नाम लेता
है। कोई भी बच्चा है बाप का टाइटल धारण कर सकता है या नहीं कर सकता है? बाप टाइटलदारी है, भारद्वाज टाइटल मिला हुआ है, तो बच्चा भी क्या कहा जाएगा है? भारद्वाज। जीवन भर वो टाइटल चलेगा या नष्ट हो जाएगा? चलेगा। और कन्या को है? कन्या को टाइटल मिलता है बाप का? नहीं मिलता। किसका टाइटल मिलता है? पति का टाइटल मिलता है। तो वो आत्मा जो इस सृष्टि के बिल्कुल अंत तक ऐसा रूप धारण करती है शारीरिक रूप में, जो जड़ रथ बन जाता है। क्या बन जाता? जड़ रथ बन जाता। जिस रथ के लिए गीता में भी बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, हे अर्जुन ये तुम्हारा जो शरीर है ये धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र है। सारे संसार के लिए यही केंद्र बिंदु है धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र के लिए। क्यों? सारे संसार में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो महामृत्यु के समय इसी शरीर को, इसी रथ को, जड़ रथ को या चैतन्य रथ को है? रथ को आत्मा में आवेश करता हूं ये नहीं बोला। क्या बोला है? रथ लेता हूं या आत्मा को लेता हूं? रथ लेता हूं, आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। चाहे अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, रथ को आधीन करता हूं। तो वो रथ जो है वो ही लिंग है। क्या? जो रथ है वो क्या है? जड़त्वमयी लिंग है और वो ही परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म माने बड़ी ते बड़ी माँ है। तो संसार में जो भी पिता होते हैं सृष्टि रचने के लिए जिसको आधार बनाते हैं वो माता पति के अधीन होकर रहती है या अधिकारी बनकर रहती है? जो चित्त शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, वो अधीन रहकर बनेगी या जो जड़त्वमयी शक्ति है वो अधीन बन के रहेगी? जिसमें जड़त्वमयी बुद्धि है वो अधीन रहेगा, जो चेतन है वो अधीन नहीं रह सकता। तो इसलिए परम पिता परम पुरुष के रूप में जो शिव है वो सिर्फ चित्त शक्ति है, चैतन्य शक्ति, उसमें जड़त्व का नाम निशान नहीं है। लेकिन वो भी अकेले इस सृष्टि का, नई दुनिया का निर्माण कर सकता है? हैं? नहीं कर सकता। इसलिए उसे भी इस सृष्टि पर आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या मजबूरी है? अरे पिता बनने वालों की क्या मजबूरी है?
अरे
पिता बनने वाले, पिता बनने से पहले मोस्टली नौजवान होते हैं, उनकी क्या मजबूरी होती है? हा? जो बरबस पिता बनने के लिए लालायित हो जाते हैं। अरे कोई मजबूरी होती है? जो शिव बाप भी कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में आना पड़ता है, पतित शरीर में आना पड़ता है, पड़ता है माने मजबूरी है, हा? या नहीं मजबूरी है? हरेक कुमार की, हरेक पिता की, कुमार जो पिता बनने वाला है उसकी क्या मजबूरी है? अरे यहाँ ज्यादातर गृहस्थी बैठे हुए हैं, बताओ ना। अच्छा कुल बनाने के लिए मजबूरी है, कुल का ठेका लिया हुआ है क्या? कुल के ठेकेदार हैं? अरे कोई तो बताओ। हा? कोई नहीं बताता है?
वंशावली वृद्धि करने के लिए,
वंशावली चलानी है। अच्छा वंश वृद्धि करनी थी आपको जब नौजवान थे, इसलिए शादी की थी? अरे सच्ची सच्ची बात बताओ। दुनिया का एक बड़ा विद्वान, उसने ये बात निकाली कि मैंने समाज में जो सच्चाई देखी वो ये देखी कि एक कुमार के संकल्प एक पलड़े में रखे जाएं और जो अदर कुमार हैं शादीशुदा हैं उनके दुनिया भर के संकल्प दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो कौन सा पलड़ा भारी हो जावेगा? है कुमार का एक संकल्प का पलड़ा भारी हो जावे। नहीं समझ में आया? अब आया? पहले अनुभव नहीं किया था? जो अकूट शक्ति का भंडार है पुरुष, जैसे शिव बाप बड़े से बड़ा बाप है, परम पिता है, उसका कोई पिता नहीं है, वो अखूट शक्ति का भंडार है, बेहद की शक्ति है। ऐसे ही इस सृष्टि में, हद की दुनिया में बेहद शक्ति का भंडार हरेक पुरुष मात्र होता है, जिसे ब्रह्मवाणी में बोला है, ब्रह्म वाक्य में दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा बोला है। याद आया? बोला है कुमार यदि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया का विनाश करना चाहें तो विनाश भी कर सकते हैं और नई दुनिया की स्थापना करना चाहें तो नई दुनिया की स्थापना भी कर सकते हैं, माने असंभव से असंभव कार्य को संपन्न कर सकते हैं। क्या ताकत है उनमें? अधर कुमारियों में, कुमारियों में वो ताकत नहीं बताई, कुमारों में क्या ताकत है? है
शक्ति की ताकत।
क्या ताकत? उसको नाम नहीं है ताकत का, जैसे शिव में अखूट ज्ञान भंडार की शक्ति है, जो उस ज्ञान के अखूट भंडार को धारण कर लेता है उसमें अखूट योग की शक्ति आ जाती है, अखंड योग शक्ति। क्या आ जाती है? है अखंड योग शक्ति आ जाती है, जो योग की पावर दुनिया के कोई योगी में नहीं होती। ऊंचे से ऊंची आत्मा शिव बाप योगी है, योगी है, योग लगाता है नहीं लगाता है, वो योगी नहीं है। क्या है? है अखूट ज्ञान का भंडार है, वेद का बाप है, अखूट ज्ञान के भंडार का वर्षा देता है। ऐसे ही इस मनुष्य शक्ति में वो आता है तो जिसको अखूट ज्ञान का भंडार देता है, जो सर्वोपरि है, गीता में भी लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। और शिव बाप ने भी बोला, दुनिया के सारे काम पवित्रता की शक्ति से होते हैं। तो शिव बाप है ज्ञान का भंडार, और जो ज्ञान के आधार पर तरीका बताता है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है, वो कौन है? राजयोगी होगा या नहीं होगा? अरे खुद योगी होगा तभी पढ़ाएगा, या नहीं होगा तो भी पढ़ाएगा। बाप खुद जमींदार होगा तो जमीन देगा, धनवान होगा तो धन देगा। जो शक्ति जीवन भर अर्जित की होगी वो ही शक्ति बच्चे को देगा। तो इस शक्ति में, मनुष्य की शक्ति में, कोई एक ही आत्मा है जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहरत है कहा गया है। इसलिए परमात्मा शब्द परमपिता के बाद लगाया जाता है। ऐसे कोई नहीं कहता परमात्मा परमपिता, कहते हैं? ऐसे कोई नहीं कहता शंकर शिव, कहते हैं? नहीं। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। तो वो परमात्मा का मतलब ये है, भोगी आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, योग बल के आधार पर बाप समाना भुक्ता बनता है। तो जो अभुक्ता बनता है वो शिवलिंग में कौन सा रूप दिखाया है? शिवलिंग में कौन सा रूप है जो भोगी है? लिंग भोगी है, और उसमें जो बिंदु है वो मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा है, जो योग बल के आधार पर बाप समान बन जाती है। यही बात शिव बाप कहते हैं ब्रह्म मुख से, ब्रह्मवाणी में। क्या क्या कहते हैं? न मैं पूज्य हूँ न पुजारी बनता हूँ, वो वो पूज्य भी नहीं, पुजारी भी नहीं, क्योंकि पूजा उसकी होती है जो प्रैक्टिकल जीवन में पवित्र बने, उसी की होती है ना। और पुजारी वो बनता है जो पूज्य बना हो। क्या देवताएं पूज्य बनते हैं? तो द्वापर युग से भिन्न भिन्न मूर्तियों के रूप में, चित्रों के रूप में, उनकी नामों के रूप में पूजा होती है। शिव ज्योति बिंदु न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। फिर ये शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है जो पूजा जाता है, और वो उसका जो असली रूप सोमनाथ मंदिर दिखाया गया, उसमें लिंग और ज्योति बिंदु रूप हीरा, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? हैं? हाँ जी, वो हीरो पार्टधारी की आत्मा की यादगार है, जो 100% आत्मिक स्थिति में टिक जाती है। इच्छा मात्रम अविद्या। क्या? कोई इंद्रियों का भोग भोगने की इच्छा नहीं। इंद्रियां इंद्रियों में अपना कर्म भले करें, लेकिन वो इंद्रियों का धारण करने वाली शरीरधारी आत्मा उन इंद्रियों का रस लेती ही नहीं। क्या? इंद्रियों के रस भोगने से अतीत चली जाती है। तो इंद्रियों का रस भोगने से जो अतीत चला जाएगा, पार चला जाएगा, वो कौन सा सुख भोगेगा? अति इंद्रिय सुख भोगेगा। फिर नंबर 12 है 16108 गोप गोपियां, जिनके लिए शास्त्रों में गायन है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। दुनिया इस रहस्य को नहीं जानेगी। क्या? कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, है? संग के रंग से हो सकता है, या संग का रंग प्रैक्टिकल जीवन में शरीर से लिए बगैर हो सकता है? संग के रंग से ही हो सकता है। ऐसी शरीरधारी आत्मा का संग का रंग लिया जाए जो कर्म इंद्रियों में देखने में तो आता है कि रमण करता है, कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, अकर्ता नहीं है। क्या? करता है, लेकिन जैसे करते हुए भी नहीं करता है, देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता। सारी दुनिया ग्लानी करे एक तरफ हो जाए और सारी दुनिया की ग्लानी को सुनेगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। व्यर्थ की चीज है, फालतू। असलियत क्या है वो उस एक के सिवाय कोई नहीं जानता। जानता है तो ग्लानी कभी करेगा ही नहीं। जो जानता जाएगा वो उस 16,000 के राज परिवार की लिस्ट में आता जाएगा, जो सत्युग त्रेता में राजा रानी बनते हैं। कई जन्मों में बने या कोई जन्म में बने, बनते जरूर है। राजा रानी नहीं बनेंगे तो उनके परिवार के भाई बंधु बनेंगे। जो राजा होता है उसके भाई बंधु होंगे परिवार के, तो वो प्रजा के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि नहीं है? करते हैं, ऐसे नहीं नहीं करते हैं, जैसे गाया हुआ है, राज्य कंस के बाप के हाथ में था, बाप राजा था, लेकिन सारा कार्यभार प्रैक्टिकल में कौन संभालता था? नहीं, कंस का बाप संभालता था या कंस संभालता था? है, अरे कंस संभालता था, दुराचारी। ऐसे ही दिखाया हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र राजा था, राज्य की प्रजा ने उसे राजा नहीं बनाया था, है? वो चालाकी से राज्य धर बैठा था, इसलिए धृतराष्ट्र नाम हुआ। जैसे आज की दुनिया में बड़े बड़े पूंजीपति भारतवर्ष में हैं, जो भारत की राजनीतिक पार्टियों को बहुत धन दान देते हैं, वो ही पार्टियां जीतती हैं जो बहुत बढ़िया प्रचार करती है। तो जिनसे धन मिला वो पार्टियों से बनने वाले मिनिस्टर कार्यकारिणी में कार्य करने वाले बड़े बड़े अधिकारी उस धनदाता का लोहा मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये आज के धृतराष्ट्रों की दुनिया है, ऐसे नहीं द्वापर के अंत में कोई हुए थे। आज की दुनिया में वो पांच पांडव हैं जो गली गली की खाक छानते हैं बैगर बनकर के, रोटी दाल की भीख लेते हैं, और पहले पहले भीख मांगता है उनका बाप पांडो रूपी पंडा। इस पंडे का काम होता है असली रास्ता बताना, तीर्थ था माने स्थान, तीर माने किनारा, ऐसे स्थान का रास्ता बताता है जो मनुष्य जीवन का आखिरी लक्ष्य ठिकाने पर पहुंचा देता है, एक किनारे पहुंचा देता है, संसार सागर में डुबाता नहीं है। वो पंडा नरक की दुनिया से, नरक का जो इस पार है, तीर है, किनारा है, उस वैतरणी नदी, विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाता है, स्वर्ग में ले जाता है। वो स्वर्ग में ले जाने वाले पंडे की बात बताई क्या है? कि गीता में लगा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की, सरसत की बात है, किसके द्वारा स्थापना कर रहे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा था मौजूद उस समय, फिर कैसे कर रहे हैं? है, हाँ, बोला स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो पहले जरूर राजयोग पढ़ाएंगे। क्या राजयोग पढ़ाएंगे या बिना पढ़ाई पढ़ाए? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाए बगैर कोई राजा बन सकता है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने वाले इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने वाले डॉक्टर बनते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ने वाले वकील और जज बनते हैं, तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले राजा बनते हैं। जो राजा बनने की पढ़ाई सिवाय भगवान के कोई दुनिया में पढ़ाता ही नहीं। दुनिया में मनुष्य मात्र ग्रेट धर्म पिता थोड़े ही भले हो, ग्रेट फादर भले कहा जाए, सारी मनुष्य सृष्टि का आधा हिस्सा मनुष्य उसको अपना बाप मानते हो। कौन सा धर्म पिता है? है क्राइस्ट। लेकिन वो भी राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, आधीन बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है या स्वाधीन बनने की पढ़ाई पढ़ाता है? सभी धर्म पिता हैं, ब्रह्मा से लेकर के और इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से लेकर के उनके सहयोगी धर्म पिताओं तक भी और उनके सारे फॉलोअर्स, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य क्यों न हो, बड़े बड़े उनमें राजाएं क्यों न हुए हो, महत्वाकांक्षी, वो सब क्या बनाते हैं? आधीन बनाते हैं, दास दासी बनाते हैं, नौकर चाकर बनाते हैं। आज भारतवासी क्या समझते हैं? ऊंची ऊंची नौकर बनना अच्छा है या राजा बनेंगे हम? भगवान राजा ही देने आया है। बड़े बड़े पंतड़े, फर्स्ट क्लास मार्क्स लाने वाले विदेश में जाके सेवा करना पसंद करते हैं या भारत की सेवा करना पसंद करते हैं? हैं? भारत की? विदेश में जाना पसंद करते हैं। तो देखो, इसलिए बाबा ने कहा कि मैं जो सेना लेता हूं वो नकलची बंदरों की लेता हूं। बंदर बहुत बढ़िया नकल करता है। इस विकारों की दुनिया में जितना बंदर की जाति नकल अच्छी कर लेती है मनुष्यों की, विकारी मनुष्यों की, उतना कोई प्राणी अच्छी नकल नहीं कर पाता। काम विकार में, क्रोध विकार में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, किसी भी तरीके से देखो, अहंकारी ऐसा हाथी भी जा रहा होगा तो भी उसको घुड़क मारेगा आगे बढ़कर। दे अहंकारी है या असलियत है? है? दे अहंकारी है। हाथी अगर थोड़ा भी मुड़ जाएगा सूंड लपका के तो भाग जाएगा। मोही इतना कि बंदरिया हो या बंदर हो, दोनों में से कोई बचेगा, बच्चा मर जाएगा तो महीने दो महीने चार महीने उसे खाकर सड़ी हुई को पेट में दबा के रखेगा। क्रोध ही इतना कि जब क्रोध आएगा तो अपने परिवार के प्राणियों को ही अच्छी तरह से हिंसा करेगा। लोभ ही इतना कि छोटे मुंह की मटकी मिट्टी की उसमें चना डाल दो भुना हुआ, बंदर आके उसमें हाथ डालेगा, मुट्ठी बांध लेगा, उसकी मोहरा छोटा है वो लिए लिए फिरेगा, मुट्ठी नहीं छोड़ेगा। इतना लोभी और कामी इतना कि मकान की टुंगस पर चढ़ जाएगा बंदरी को लेकर, पेड़ की टुंगस पर चढ़ जाएगा वहां जाकर के विकार भोगेगा, उसको कोई शर्म लिहाज नहीं हो सकती। तो ऐसे मुमन बंदरों की सेना भगवान लेता है और बंदरों को किसके लायक बनाता है? मंदिर में मूर्तियां जिनकी बनाई जाए इसे लायक बनाता है, देवता। तो बोला राजा बनाने से पहले बेहद विश्व की बादशाही सौंपने से पहले राजयोग जरूर पढ़ाएंगे। तो बताओ 18 जनवरी 69 तक राजयोग पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, सिखाया या नहीं सिखाया? ब्रह्मा कुमारियों के सामने साबित करोगे है कि ब्रह्मा बाबा ने राजयोग नहीं सिखाया? अरे वो साबित करेगा। अरे जब साबित ही नहीं करेंगे तो वो मानेंगे कैसे? और वो ही नहीं मानेंगे जो ब्रह्मा भक्त हैं, ब्रह्मा की वाणी सुनते हैं सुनाते हैं, तो दुनिया वाले मानेंगे है? तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है, है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा की मूर्ति जो बना के रखी है वो मूर्ति विष्णु का कार्य तो बाद का है, राजधानी स्थापन होने के बाद। पीछे में शंकर का पार्ट आता है, ब्रह्मा के बाद शंकर की मूर्ति का पार्ट। तो मूर्ति के रूप में आज भी यादगार में 3 शेर दिखाए जा रहे हैं, अशोक की लाट में हो, नोटों में चित्र छपे हो 3 शेर के, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड यादगार बने हुए हैं। तो वो दूसरी मूर्ति जो योगी के रूप में चित्रों में ज्यादा दिखाई जाती है वही मूर्ति है जो राजयोग सिखाने वाली है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म महावाक्य में कहते हैं राजयोग सिवाय एक शिव बाबा के दुनिया में कोई भी सिखा ही नहीं सकता। चाहे दुनिया में कोई हो, चाहे ब्रह्माओं की दुनिया में कोई निकले, विष्णु पार्टी नाम धारण करने वाले, कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकते। भोगी बनाएंगे लेकिन राजयोगी नहीं बना सकते और पढ़ाई भी नहीं पढ़ा सकते। पहले थ्योरी और फिर अंत में प्रैक्टिकल भी देखा जाता है। तो प्रैक्टिकल में जो पास सो पास, प्रैक्टिकल में फेल तो फेल कहा जाता है। पूरी थ्योरी में कोई पास हो जाए और प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो फेल ही कहा जाएगा। ऐसे बहुत से वकील होते हैं, सालों साल पढ़ाई पढ़ते हैं वकालत की और प्रैक्टिकल में किसी बड़े वकीलों के नीचे काम करते हैं तो टोटल फेल हो जाते हैं। बाबा कहते कोई कोई वकील चार आने भी नहीं कमा पाते दिन में, तो फेल हुए या पास हुए? फेल हो गए। ऐसे ही है कि वो स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप अभी वो रास्ता तो बताते हैं, राजयोगी बनने का रास्ता बताते हैं, राजयोग से विश्व की बादशाही लेने का रास्ता बताते हैं, तो हम बाबा बाबा करते रहें कि शिव बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं बेहद का, क्योंकि हमारा बेहद का बाबा है। हद का मकीन जमीन जायदाद का वर्षा नहीं ले रहे हैं, बेहद का वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का है, और वो वर्षा हमको बड़ा सहज देते हैं। क्या? क्योंकि सहज राजयोग की पढ़ाई है, ये पढ़ाई कठिन राजयोग नहीं है। कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, क्या कहते हैं? मुझे याद करो। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? कौन सी आत्मा कहती है मुझे याद करो? शिव बाबा कहते हैं। उनका रूप क्या है? साकार निराकार ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा के तन में कौन कहते हैं? हैं? कहते ही हैं कि मुझे याद करो बच्चे, और वर्षे को याद करो। फिर कहते हैं घर को भी याद करो, घर को याद करें, वर्षे को याद करें, मुझे एक को याद करने की बात कहते हैं, तीन को याद करें कि एक को याद करें? अरे तीन नहीं हो गए? घर को याद करो, वर्षे को याद करो, घर है आत्माओं का, आत्मलोक परम धाम, वर्षा है स्वर्ग की बादशाही, और मुझे याद करो। कौन सी आत्मा कहती है? उनको मन है। शिव बाप अगर कहें मन मना भव, तो उनको मन है, वो तो सदा मन चैन में रहने वाला है, उनको तो मन है ही नहीं जो चलाए मन हो। तो कौन कहते हैं मुझे याद करो? जिसमें प्रवेश करते हैं वो हीरो पार्टधारी, जब संपन्न बाप समान बनता है तब की बात है। क्या? सारी मनुष्य शक्ति उस एक को ही याद करेगी। वो एक क्या याद करता होगा? वो एक याद करेगा, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अरे भाई तुम्हारे लिए बाबा कौन? बाबा तो साकार निराकार का मेल। तो शिव बाप कहते हैं तेरी बुद्धि में बाबा कहने से सिर्फ बिंदी ही याद आवे, वो तेरी जिसके लिए बोला वो एक तेरी कौन है, वो एक के लिए बोला कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से साकार कोई याद नहीं आएगा, कौन याद आएगा? बिंदी ही याद आएगी। तो वो स्वरूप कौन सा है जो बाप का बड़ा बच्चा है, वो अंत तक अपने बाप को ही याद करेगा, निराकार रूप में, ज्योति बिंदु रूप में। और वही बच्चा कह सकता है क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा। अरे तेरे मन में क्या है? तेरे मन में क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा शिव वही तो है, तो उसी में तुम समा जाओ। मत मना भव, मेरे मन में समा जाओ, माने मेरे मन में निराकारी ज्योति बिंदु है तो तुम भी उसी में समा, निराकारी ज्योति बिंदु बनकर के समाएंगे या इंद्रियों से जो देह बनी है वो देह बनकर के समा जाएंगे हैं? हाँ, देह को भूल जाओ, देह की इंद्रियों को भूल जाओ, अपन को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो निरंतर। ऐसी स्टेज इस मनुष्य शक्ति की सब मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ की बनेगी तो सभी उसकी याद में समा जाएंगे, उसी में से जन्म लेते हैं, नई सृष्टि बनती है और अंत में उसी में समा जाते हैं। इसलिए सन्यासियों ने लिख दिया है कि हम आत्माएं बलबूले हैं समंदर के, स्पाइस बुदबुदे, छोटे बड़े छोटे बड़े, पैदा होते हैं खत्म होते, फिर पैदा हुए फिर खत्म हुए। तो वास्तव में क्या बुदबुदे हैं? हैं? बुदबुदे तो समंदर के जल में समा जाते हैं और उन बुदबुदों में जो पानी का अंश होता है वो खारा ही रह जाता है। क्या बुदबुदे, सारे बुदबुदे इकट्ठे कर दो, पानी बन जाएगा, समंदर का जल भी खारा और बुदबुदों का जल भी खारा। तो क्या आत्मा भगवान से निकलती है, भगवान में समा जाती है तो क्या खारी है? हैं? आत्मा खारी है, भगवान खारा है, लेकिन हर आत्मा में अलग अलग संकल्प चलते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के संकल्प एक ज्योति बिंदु में समा जाए, उसे कहेंगे मन मना भव। वो एक ज्योति बिंदु आत्मा ही ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर अकेला नहीं है इस सृष्टि पर, क्या अव्यक्त वाणी में भी बोला ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया था तब बोला बाप अकेला नहीं है, शक्तियां तो साथ हैं ही, माना शक्ति रूप में जो पांचों तत्वों का बीज रूप सार है वो लिंग जड़ रूप तो साथ है ही है, वो ही माता है, वो ही परम ब्रह्म है। जो शास्त्र में गाया हुआ है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो माता हमारी गुरु है। क्या माता गुरु है या नहीं? तो माता गुरु और जिसे हम भगवान कहते हैं वो गुरु एक ही हुए या अलग अलग हुए? एक ही हुए। दो बातें, जड़ शरीर धरणी, धरणी रूपी माता, मिट्टी का संघात पत्थर बन जाता है, वो ही पत्थर का लिंग यादगार दिखाया गया, माना वो मनुष्य सृष्टि का बाप कलयुग के अंत में ऐसा जड़त्वमयी आत्मा बनता है जो वैज्ञानिक जड़ बुद्धि मूर्ख बन जाते हैं अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ करके कि हम ऐसी रचना रच सकते हैं सारी दुनिया को विनाश करा देंगे, फिर पछताते हैं। क्या पछताते हैं? क्या पछताते हैं? अरे ऐसी चीज का हमने निर्माण कर दिया, अगर हम उसका विस्फोट करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। इसलिए बहुत डरते हैं क्या होने वाला है। तो वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं, अंतिम रचना है, लास्ट तमो प्रधान रचना, आर्य समाजियों से भी लास्ट की रचना। आर्य समाजी भारत में गाए गए हैं, वो विदेश में है। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वो विदेशी कम्युनिस्ट हैं, चीन जापान वगैरह। तो वो जो कम्युनिस्ट हैं, नास्तिक हैं, वो न आत्मा को मानते न परमात्मा को मानते न किसी को नहीं मानते, वो अपने को ही सर्वोपरि मानते, देह अहंकार में भरे पूरे, देह का ही विश्लेषण करते, देह के पांच तत्वों का ही विश्लेषण करते, आत्मा का नाम निशान नहीं बुद्धि। तो ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि जिनकी है उनका भी कोई बाप है, वो कैसा बाप है? और ही ज्यादा कई गुना जड़त्वमयी बुद्धि वाला होगा या उनके समान होगा, उनसे भी जास्ती जड़त्वमयी बुद्धि। इसलिए कहा कि मैं जड़ शरीर लेता हूँ, रथ लेता हूँ। क्या ये रथ जो है यही धर्म क्षेत्र बनाता हूँ, कर्म क्षेत्र बनाता हूँ, यही यज्ञ कुंड है, क्या सारे संसार का कल्याण करने वाला ये यज्ञ कुंड है चैतन्य में। सारी दुनिया को इसी में अपन को क्या करना है? स्वाहा करना है। तन सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो अंदर से बात आती है, हाँ अब क्या होगा। धन अर्पण करते हैं तो भी अंदर से बात आती है, हाँ अब क्या होगा। बीवी बाल बच्चे अर्पण कर देते हैं, अकेले रह जाते हैं, हाय अब क्या होगा। तो ये नाम रखा गया स्व, हा स्व माने मेरा, हा माने जो कुछ भी मेरा है वो सब गया, अपने पास अब कुछ भी रहा नहीं। तो इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शंकर को कहा जाता है, शिव को नहीं कहा जाता। शिव कल्याणकारी है और रुद्र यज्ञ में आखिरी अंजाम क्या होता है? सारी दुनिया स्वाहा हो जाती। तो वो रुद्र है, ऐसा रौद्र रूप धारण करने वाला है जो सारे संसार का विनाश करता साबित हो जाता है। इसलिए बोला राजयोग की पढ़ाई पढ़ाएंगे राजा बनने के लिए तो क्या करें, बाबा 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 कहते रहें। और वो बाबा हमको बहुत सहज वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का देते हैं, कहते हैं मुझे याद करो। और वो वर्षा बाप से मिलना ही चाहिए, मनुष्य सृष्टि का बाप है तो क्या देगा, बाप क्या देता है? अरे बाप कुछ देता है या नहीं देता है? वर्षा देता है तो क्या देता है? वो वर्षा देता है इसलिए बाप है। वो बाप कैसा जो कोई वर्षा वर्षा ना दे? जबकि हम शिव बाबा के हैं तो हमको वर्षा मिलना चाहिए, परंतु नहीं, अभी हमको नहीं मिल सकता। अभी मिल सकता है, है? क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा बाप संपन्न है,
बाप संपन्न हो जाए तो बाकी नंबर बाप संपन्न हो जाए।
न बाप संपन्न है न हम संपन्न है, तो फिर करें क्या? किस बात का पुरुषार्थ? अरे बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्या करो? अमृत वेले खास याद करो। लेकिन क्या होता है, सवेरे अमृत वेले याद करने बैठते हैं, थोड़ी देर साकार में ज्योति बिंदु निराकार याद आता है, फिर बाद में क्या होता है, फिर साकार साकार याद रह जाता है और निराकार पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब वो रट्टा लगाए बैठे हैं ब्रह्मा के मुख से मुझे याद करो, तो ऐसा क्यों होता है? है इसका कारण क्या है? नहीं लग पाता तो लगा दो, नहीं लग पाता तो लगा दो। अरे
बुद्धि भागती रहती है,
मन भागता रहता है, तो कंट्रोल नहीं कर पाते, नहीं कर पाते।
जब तक मन कंट्रोल होता है बुद्धि के साथ रहती है, तब तक तो निकालता है, उसके बाद भी घूम
जाता। तो आखिर कोई सीमा है? कि ऐसे ही चलता रहेगा? हर चीज की सीमा होती है कि नहीं? तो सीमा क्या है? एक की सीमा नहीं है। क्या सागर की गहराइयों को कोई नहीं नाप सका? नाप सका? नहीं नाप सका। उस सागर की, ज्ञान सागर की सीमा नहीं है, बाकी तो सब की सीमा है। तो वो उस सीमा तक कब पहुंचेंगे? धैर्य धारण करेंगे तब पहुंचेंगे कि अधीर हो जाएंगे तब पहुंचेंगे? धैर्य धारण करना पड़े, निरंतर अभ्यास में लगे रहना पड़े। माया कितना भी विकराल रूप धारण करे लेकिन हम धैर्य न छोड़े, लगे रहें निरंतर। जो निरंतर लगा रहता है उसे हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हारा हुआ नहीं कहेंगे। जब तक लगा हुआ है, लगन लगी हुई है, तो हारा हुआ नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और अंत में तुम्हारी विजय होनी ही होनी है। बीच में तुमको माया कितने भी लोड़े अटकाए, अंत में जरूर विजय हो जाएगी। तो अंत के लिए धैर्य धारण करके रखना है और क्या हिम्मतहीन नहीं बनना है। कहते हैं याद करो तो तुम पवित्र हो जाएंगे। माना गड़बड़ी क्या है? साकार याद रहता है, कोई 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 तो साकार भी याद नहीं रहता। ऐसे भी हैं क्या, कंप्लेंट करते हैं हमको तो न साकार याद आता है न निराकार याद आता है। बहुत से तो कहते हैं हम बिंदी कैसे बने? बिंदी आत्मा अपने स्वरूप की भी याद नहीं रख पाते। तो कहते हैं मुझे याद करो। अभी तो याद का पता चल गया, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, तो टीचर का पार्ट बजाय रहा है या नहीं बजाय रहा है? पता नहीं चला। जब पक्का पता चल गया कि टीचर का भी पार्ट है और बीज बोने वाले बाप का भी वही पार्ट है, तो फिर याद में टिकना चाहिए या नहीं? बाप तो कहते हैं तुम छोटे रूप को याद नहीं कर सकते, अच्छा बड़े रूप को ही याद करो, लिंग साकार को ही याद करो। जब अवस्था डटने लगेगी तो निराकार भी याद आने लगेगा, अभ्यास पक्का हो जाएगा। लेकिन बहुत से कहते हैं हमें निराकार आत्मा ज्योतिबिंदु भी नहीं याद आती और शिव बाबा भी नहीं याद आता, चेहरा ही नहीं याद आता, तब क्या करें है? बताया जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, क्या तन धन धाम सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी, क्या ये तन हो परवाह नहीं करनी है ईश्वरीय सेवा में लगे रहना है, धन हो परवाह नहीं करनी है आगे जिंदगी कैसे चलेगी, पेट पूर्ति कैसे होगी, भूखे तो नहीं मर जाएंगे, धाम महलमाड़िया अटारियां बनाए हुए हैं, परवाह नहीं करनी है कि भूकंप आएंगे सब खत्म हो जाएंगे, ईश्वरीय सेवा में लगाते रहो। सुहृद परिवार जो भी मित्र दोस्त हैं, परिवार के संबंधी हैं, उनकी जितनी भी ताकत मिल सकती है वो सब ईश्वरीय सेवा में झोंकते रहो, जितना लगाएंगे उतना नहीं उसके कई गुना पाएंगे, क्या नियम बना हुआ है, गाते आते हैं बोलते आते हैं दूसरों को सुनाते आते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन। तो देखो हमारा मन किसकी सेवा में जा रहा है 24 घंटे, देखो 24 घंटों में से कितने घंटे हमारा मन कहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है ज्यादा उनकी याद आएगी या जहाँ अंश मात्र जा रहा है उसकी याद आएगी? 24 घंटे मिलते हैं समय, आज की दुनिया में समय का बहुत महत्व है, 24 घंटे में हम कितना समय ईश्वर की याद में ईश्वर की सेवा में लगाते हैं, काउंट करें। और वो भी जो सेवा करते हैं वो भी तमो प्रधान सेवा करते हैं, रजो प्रधान सेवा करते हैं या तमो प्रधान सेवा करते हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं ज्ञान सुना रहे हैं और 20 लिहाड़ी सुनाते जा रहे हैं उसको, घड़ी घड़ी गुस्सा होते जा रहे हैं, घड़ी घड़ी लड़ाई करने लग पड़ते हैं, ज्ञान सुनाते सुनाते उस आत्मा को 20 वचन ऐसे बोल देते हैं जिससे वो आत्मा डाउन हो जाए। तो तामसी सेवा हुई या सात्विक सेवा हुई? बेकार कर दिया। सेवा तो असुर भी करते हैं, राक्षस भी अपने परिवार वालों की सेवा करते हैं, बाल बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, सेवा नहीं करते, लेकिन तामसी सेवा है उनकी। तो देखना है हमारी सेवा सात्विक है, जिनकी हम सेवा करते हैं, सेवा का दान देते हैं, योगदान देते हैं, मान लो तो जिसको दान देते हैं उसके प्रति हमारी अच्छी भावना है, अच्छे को दान दिया जाता है या गंदे को दान दिया जाता है? अच्छे समझ करके दान देना है। ये अच्छा ब्राह्मण है, अच्छी सेवा करने वाला है, इसको मान सम्मान पूर्वक देना है, ले लो। ये भी आशा नहीं करनी है कि हमने जो अभी दिया है ब्राह्मण को वो बाद में हमको वापस करेगा। क्या दिया और कुएं में डाला, वापस लेने की भी इच्छा न रहे, ऐसा दान सात्विक होता है। जो लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। तो बताया कि सेवा तो करनी है, यज्ञ तो करना है, यज्ञ माने ही सेवा, लेकिन सात्विक सेवा करनी है तो खुशी मिलेगी। खुशी मिलने से जो सुखदाता बाप है वो जरूर याद आएगा। सुखदाता तो एक ही ज्योति बिंदु है जिसे हम परम पिता कहते हैं। धर्म पिताओं का भी पिता और प्रजापिता का भी पिता, वो याद तभी आएगा जब हम सात्विक सेवा करें, और जब याद उसकी आने लगे तो क्या करें, पक्का निश्चय करें कि जिस निराकार ज्योति बिंदु हीरे को हमने याद किया तो हीरे ही बनेंगे या पत्थर बनेंगे, हीरा ही बनेंगे। तो संग के रंग की बलिहारी है, बुद्धि का संग जरूर होना चाहिए, और बुद्धि का संग तभी होता है जब जब प्रैक्टिकल में अनुभव किया। क्या संग का अनुभव किया हो, संग इंद्रियों के साथ शरीर के साथ संग होता है तभी बुद्धि में याद आता है। क्या संग का अनुभव किया ही नहीं, रसगुल्ला खाया ही नहीं, देखा भी नहीं, सूंघा भी नहीं, और याद आएगा? नहीं याद आएगा। और ईश्वरीय सेवा ऐसी चीज है कि हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, यज्ञ में सेवा करेंगे, तो सेवा करने से जो यज्ञ पिता है, दुकान का मालिक है, षष्ठी का मालिक है, वो हमसे ज्यादा खुश होगा या दुखी होगा? है? बाप कौन से बच्चों को याद करते हैं? सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। जो बाप का धंधा वो हमारा धंधा। अब देखें कि हम कौन सा धंधा करते हैं, तो घड़ी घड़ी याद करना है। कहते हैं घड़ी घड़ी याद करना है, ये भी बताते हैं कि संग का रंग लगता है, तो क्या करें? है तन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, जो भी ताकत हमारी है उन सारी ताकत लगा करके हम संग करेंगे तो बुद्धि में उसकी याद जरूर आएगी। और संग करेंगे तो साबित कैसे होगा हमने संग किया? है? संग करेंगे तो चढ़ती कला होगी या उतरती कला होगी? चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी सेवा से वो संतुष्ट है। संतुष्ट है तो सेवा हमारी सच्ची और याद भी हमारी सच्ची। जिसकी सेवा की जाती है वो याद जरूर आता है। राष्ट्रपति की सेवा करने वाला, प्रधानमंत्री की सेवा करने वाला सेवक, उसे याद नहीं आएगा? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद नहीं आएगा? याद आएगा। हम भी अगर ईश्वरी सेवा करेंगे, ईश्वर को पहचान कर पक्का करके, निश्चय बुद्धि हो करके, तो हमें संग का रंग जरूर लगेगा। तो वो याद करने की स्थिति बनाना निरंतर, इसी बात में मेहनत है। क्या पढ़ाई में कोई मेहनत नहीं है? तो कोई को भी ये समझाते हैं, बच्चे ढिंढोरा पीटना ही है, कोई माने या न माने। क्या ढिंढोरा पीटना है, है? संदेश देने का। क्या ढिंढोरा? नई दुनिया आने वाली है, इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। और ये दोनों काम कराने के लिए भगवान इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आया हुआ है। उस गुप्त रूप को जो पहचानेगा वो ज्ञानी है सच्चा। कहते हैं ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे। क्यों ज्ञानी कहा जाते? सितारों को देख करके ये जान लेते कि इतने घंटे के बाद, इतने मिनट के बाद सूर्योदय इस दिशा से होने वाला है। सितारों की गणना से जानते कि नहीं जानते हैं? तो हम भी सितारे हैं, हमारे साथी भी सितारे हैं, उनकी सेवा भी हमें पता है। हम अपनी सेवा को भी जानते हैं, साथियों की भी सेवा को जानते हैं, हम किस स्टेज पर हैं ये भी जानते हैं। नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगा तो वो जानती नहीं होगी कि मेरा नारायण का पार्ट है, वो साथियों को नहीं जानती होगी कि मेरे राज्य में साथियों की शूटिंग करने वाले इस समय कौन कौन हैं, जो विशेष सहयोगी हैं। ये बात दूसरी है कि समय की शूटिंग के अनुसार तामसी शूटिंग बजा रहे हैं या सात्विक शूटिंग बजा रहे हैं, है? ये भी देखना है कि नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं बच्चों के सात्विक रूप को देखता हूँ, वर्तमान तामसी रूप को नहीं देखता, क्योंकि जानता हूँ दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, तो शूटिंग पीरियड भी चार अवस्थाओं से पसार होता है। तो ढिंढोरा पीटना है संदेश देने का, कोई माने या ना माने, ये आगे भी हुआ है ढिंढोरा पीटने का काम यज्ञ के आदि में। तो निमंत्रण देना है और बाबा बाबा करके बहुत मीठे मीठे अक्षरों में निमंत्रण देना है, ये नहीं लड़ाई करके चले आओ। आओगे कि नहीं आओगे? नहीं आओगे तुम्हारा नुकसान होगा, तुम नरक में जाओगे। तो ये मीठे मीठे वचन हुए, तो बहुत मीठा अक्षर है बाबा। हम भी शिव बाबा से अभी सुख और शांति का वर्षा ले रहे हैं। वो ही कह पाएगा जिनको संदेश देता है उनके सामने सुख शांति में रहना महसूस करता हो, है? जिनको संदेश देते हैं वो दुखी और अशांत हमको देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए रोज देखते हैं, तो मानेंगे? हैं? नहीं मानेंगे। ओम शांति।